नमस्ते दोस्तों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ भागों से हम ये देख रहे थे कि कैसे इंसान कई बातों को अंदर होल्ड करके रखता है, उसके लिए माफी देना किसी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये माफ क्यों नहीं कर सकता वो, आज उसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे डॉक्टर सचिन के साथ। हर बार की तरह वो आज मेरे साथ स्टूडियो में है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत है, ओम शांति, नमस्ते।
ओम शांति।
माफ इसीलिए भी नहीं करता है सचिन भाई की, अंदर दो तीन बार एक्सपीरियंस उस व्यक्ति के आने के बाद एक तरह का माइंडसेट तैयार हो जाता है, और वो माइंडसेट जब भी वो व्यक्ति सामने आता है तो अनायास हमारे अंदर से वो भाव निकलता है उसके लिए, जो आपको पहले एक्सपीरियंसेस आ चुके थे, तो एक परसेप्शन तैयार हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हम माफ नहीं कर सकते।
ये बात बिल्कुल ठीक है कि मनुष्य का स्वभाव अगर हम देखें ना, तो बचपन से लेके अब तक उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसकी एक फाइल अंदर पड़ी रहती है, हम सबके अंदर है, और हर एक व्यक्ति की फाइल बनी हुई है। होता क्या है कि अनुभव है, उसमें से कितने अनुभव सकारात्मक है कितने सकारात्मक नहीं है। अगर मेरे जीवन में ज्यादा अनुभव जो आए हैं वो अगर नकारात्मक है, तो आगे भी जो आ रहे हैं लोग, मैं उनको उसी दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मुझे अगर समझो जीवन में किसी ने धोखा दिया है, तो कोई भी व्यक्ति नया आएगा या इवन पहचान वाला भी व्यक्ति हो, तो भी मैं उसके साथ इंटरेक्ट करते वक्त, व्हाइल आई एम इंटरेक्टिंग विद दैट पर्सन, मेरे पीछे वो है फाइल पड़ी हुई धोखे की, तो मैं उसी दृष्टिकोण से उसको देखूंगा। इसके दूसरे पक्ष को अगर हम देखें कि मेरे जीवन में अनुभव जितने भी हुए हैं उसमें मेजॉरिटी अनुभव सकारात्मक है, मुझे अच्छे लोग मिले हैं जीवन में, और मुझे धोखे कम मिले हैं या मेरा नुकसान कम हुआ है, ओवरऑल मैं पॉजिटिव एनर्जी है, तो मैं अगर परिस्थिति भी आए ना तो मैं उसकी ब्राइटर साइड को, अच्छे साइड को देखने की कोशिश करूंगा।
जी,
अभी ये जो लोग होते हैं कि जो माइंडसेट की आपने बात कही, ये माइंडसेट दोनों तरह से काम करता है, यही मैं कहना चाहता हूँ। माइंडसेट हमेशा निगेटिव नहीं रहता है या हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता है, इट डिपेंड्स कि आपके जीवन में क्या हुआ है अभी तक। तो बचपन से ओवरऑल बहुत निगेटिव एटमॉस्फेयर रहा हमारे जीवन में, क्योंकि झोपड़पट्टी से आए, चाल में रहते थे, राइट्स वाला एरिया था, मारामारी होती थी, मैंने देखा बहुत निगेटिव है, और फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है कि बहुत सारे, हर एक फैमिली में कुछ तो इश्यूज होते हैं, वो सबके साथ हम बड़े हुए। बट जैसे ये राजयोग का पढ़ाई किया और परमात्मा के महावाक्य हमने सुने, जिसको हम मुरली क्लास कहते हैं, जिसमें परमात्मा के महावाक्य आते हैं, तो पढ़ पढ़ के उसके ऊपर मनन चिंतन करके हमने देखा कि परिस्थिति नकारात्मक है या व्यक्ति नकारात्मक है, लेकिन उसको हमने डिटैच करना सीख लिया।
जी।
और फिर मैंने देखा कि अपना माइंडसेट हम बदल सकते हैं, हालांकि जो हमारे बचपन के लेके जो घटनाएं घटी हुई हमारे साथ वो इंटरफियर जरूर करती है।
जी।
नया माइंडसेट बनाना जो आपका मुख्य प्रश्न है कि ऐसा माइंडसेट बना हुआ है तो क्या उसको बदला जा सकता है, उसके ऊपर मैं कह रहा हूं कि यस, अगर हम लक्ष्य रखें, अटेंशन रखें, और उस व्यक्ति को नकारात्मकता से अलग करें, तो ये संभव हो सकता है।
सही बात आपने कही, लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि हम नए माहौल में जाते हैं, नई चीजें सीखते हैं, कई लोग पूरा इंडिया में पले बढ़े, फिर फॉरेन में गए, वहां का पूरा नया कल्चर अडॉप्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो पुराने ट्रेट है, जो आपके बचपन के ट्रेट है, आपके मदर फादर के हैं, वो इंटरफेयर करते हैं, बहुत बार डोमिनेंट भी होते हैं, तो उसको कम करने के लिए हम एग्जैक्टली ऐसी कौन सी स्टेप करें या क्या करें ताकि वो, जैसे आपने राजयोग का बताया, लेकिन फिर भी स्टेप बाय स्टेप ऐसा क्या होगा?
Yes. जैसे कल भी हमने देखा, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम बार बार देख रहे कि रुको, देखो, आगे बढ़ो, सो रुक कर देखना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन यहीं पे काम करता है कि हम अपने आप को देखें कि मेरे क्या पैटर्न्स है। कई बार लोगों को ये पैटर्न्स है पता ही नहीं चलता है कि मेरे अंदर ये वृत्ति है, और ये वृत्ति ऐसी है कि ऑटोमेटिक काम करती है, इसके लिए सोचना नहीं पड़ता है। जो आपने कहा ना बचपन के पैटर्न्स हैं, तो ये एक्चुअली एक प्रोग्रामिंग है हमारा जो बचपन से हुआ है। पहले आपको देखना पड़ेगा कि मेरा प्रोग्राम क्या है, क्या मुझे हर बात में गुस्सा आता है, हर बात में मैं नकारात्मक या हर बात में संशय की दृष्टिकोण से देखता हूँ या हर बात में मेरे को डर लगता है, क्योंकि बचपन में मेरे को माँ बाप ने बहुत रिजिड अपब्रिंगिंग किया है मेरा, मेरे को बहुत डांटा है मारा है, तो हर बात में डर रहेगा। या बचपन से मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती गई है तो मेरा डोमिनेशन नेचर है, मेरा डिमांडिंग नेचर है, क्या है, तो वो पैटर्न मुझे देखना पड़ेगा। और जैसे ही मैं उस पैटर्न को देखता हूँ तो मुझे एक अपने आप से सवाल करना है कि अब तक मेरा यह पैटर्न रहा, पर इज इट हेल्दी, इज इट हेल्पिंग मी इवन एट एडल्ट स्टेज। मैंने बचपन में मैंने उसको यूज किया, इसको हम साइकोलॉजी में डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। जब हमारे जीवन में कोई भी तनाव वाली परिस्थिति आती है तो हम उसको हैंडल करने का हर एक का तरीका होता है, और उसमें खास करके चार पैटर्न होते हैं। एक होता है कि अपने आप को एकदम गरीब समझ लेते कि मैं तो गरीब हूँ, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं, कोई मेरे को प्यार नहीं करता। इसको हम एक उदाहरण में देखेंगे। एक बहुत अच्छे स्पीकर ने बताया था जो मुझे याद है कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ शॉपिंग मॉल में जाता है और उसको कोई चीज वहां पे दिखता है, खिलौना पसंद आता है, बोलता मम्मी मेरे को चाहिए, मम्मी बोलते नहीं मिलेगी, तो बोलते मम्मी तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरे से कितना प्यार करते हो, मेरे को दे दो, पहले प्यार से चलेगा। फिर नहीं माना तो फिर वो दूसरा टेक्निक इस्तेमाल करेगा, वो बोलेगा मम्मी तुम सचमुच में मेरे से प्यार नहीं करते, तुम भैया से ज्यादा प्यार करते, इसलिए तुम मेरे को नहीं दे रहे हो, उससे भी कुछ काम नहीं होता है। फिर तीसरा टेक्निक वो इस्तेमाल करेगा कि वो टेम्पर्स माना अपने आप को फेंक देगा, मैं नहीं कहीं जाता, मैं इधर ही बैठा रहूंगा, ठीक है,
जिद्दी।
हाँ, और उसके बाद लास्ट पैटर्न वो इस्तेमाल करेगा, उसके बाद भी मम्मी नहीं मानती तो आइसोलेट हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा।
ओके।
तो ये चार पैटर्न है जिसको हम कहते हैं कि नाइस, नास्टी, पुअर मी और इनडिफरेंट। या तो आप अच्छे बनेंगे, नास्टी बनेंगे, पुअर मी या इनडिफरेंट हो जाएंगे। अभी आप बड़े हो गए पर यही चार पैटर्न आप इस्तेमाल करते हैं
जी,
माना ये डिफेंस मैकेनिज्म है अपना काम करवाने के लिए, अपनी बात मानो, ये तो अच्छे बनेंगे या नास्टी बनेंगे या फिर पुअर मी करेंगे, सिंपथी मांगेंगे दूसरों से, या फिर इनडिफरेंट हो जाएंगे।
पर कई लोग उसको चैनलाइज भी करते हैं।
यस, यही पे आता है सॉल्यूशन कि यही मैंने कहा कि बचपन में ये ठीक था जब आप छोटे थे
जी,
लेकिन अभी आप बड़े हो गए तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म हम इस्तेमाल करते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक न्यूरोटिक होते हैं जो हमने देखे, और एक होते हैं मैच्योर, और कई साइकोटिक भी होते हैं। कई जैसे मैंने देखा है, अभी शायद मेरे पास पैथोलॉजिकल केसेस आते हैं, अगर मम्मी पैसा नहीं देती है तो मम्मी को मारने को भी देर नहीं करते हैं, बच्चा अपने मम्मी को मारता है, साइकोटिक रिएक्शन है ये। कोई इसको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, कोई खाना नहीं खाएगा, ये सब न्यूरोटिक पैटर्न है। मैच्योर पैटर्न है कि हेल्दी रिस्क में बात करो, आप अच्छी तरह से रेस्पेक्टफुली बात करो और ह्यूमर को इस्तेमाल करो, ये मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है ना। या तो फिर आप बहुत गहराई में जाके मेडिटेशन में अपनेपन, जो अपने अंदर जो खालीपन है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसको भर दो, ये मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये तीन प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म माना परिस्थिति का तनाव दूर करने के लिए हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है, एक न्यूरोटिक, साइकोटिक और एक मैच्योर होते हैं। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म को हम इस्तेमाल करें, पद्धतियों को। अभी जो पैटर्न्स आपने जो बताए जो मेरे को तकलीफ दे रहे बचपन से, तो मुझे अपने आप से बात करना चाहिए कि बचपन से लेके मैं ऐसा हूं पर अभी मैं बड़ा हो गया हूं
जी।
क्या बड़ा होने के बाद भी ये रूसना, नाराज होना, बात नहीं करना, क्या मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूं, क्या ये ठीक है, क्या इससे मेरे जीवन में खुशी आ रही है या मेरे रिलेशनशिप भी इससे अफेक्ट हो रहे हैं, अपने आप से बात करो। और जब आपको लगेगा कि नहीं अभी ये काम नहीं कर रहे हैं, मुझे इसकी जगह पे एक मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करना चाहिए।
एग्जैक्टली, ये समझ में आने के बाद एक्सेप्ट हो जाता है कि हाँ ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, ये मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो शक्ति नहीं होती है चेंज करने की।
तो दो ही बातें हैं, एक है नॉलेज, एक पावर। एक बार आपने रियलाइज कर लिया कि मेरे से गलती हो रही है, आई नीड टू चेंज, तब आता है कि आपको सही मार्गदर्शन लेना चाहिए। उसके लिए फिर संकल्प है कि आई एम विलिंग टू चेंज माई सेल्फ, मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूँ, क्या करना है मैं जानना चाहता हूँ, मुझे कोई योग्य तरीके से बताए कि क्या करना चाहिए तो मैं करने को तैयार हूँ। और इसके लिए फिर आपको योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन करना, इट्स रियली वेरी चैलेंजिंग, मैं फिर से कहता हूँ ये बहुत चैलेंजिंग है। और सब जितने भी ट्रेनिंग हम लेते हैं, मुझे ज्यादा से ज्यादा टॉपिक जो बोला जाता है कि एटीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन, लोगों की वृत्तियों को बदलना ये इसके ऊपर ज्यादा है। मैंने देखा बहुत सारे कंपनियों में लोग बहुत टैलेंटेड है, माना उनका टैलेंट है, उनका आईक्यू अच्छा है, पर काम ही नहीं करना चाहते, तो आप उसको क्या करेंगे? तो प्रॉब्लम इज नॉट क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए सबको पता है
जी।
जैसे कि हम हमेशा इमोशनल इंटेलिजेंस में कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, सबको पता है
जी, मोटे मोटे रूप में बातें बहुत सारी पता है, पर सूक्ष्म में नहीं मालूम,
सूक्ष्म में नहीं जाते या डेप्थ में नहीं जाते हैं, ज्ञान की गहराई में नहीं जाते हैं और उसको रियलाइज नहीं करते हैं, तब तक परिवर्तन नहीं होगा
जी।
और मेडिटेशन यहाँ पे बहुत मदद करता है हमको, हमने देखा अपने जीवन में भी देखा और जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनमें भी देखा कि जब तक आप गहराई में जाके एकांत में बैठ के अपने आप बातें करके रियलाइज नहीं करते हैं और रियलाइजेशन के साथ में आपके अंदर वो शक्ति नहीं आती, तब तक आप पूरा परिवर्तन नहीं कर सकते। मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक व्यक्ति ने समझो मेरे बारे में उल्टा सुल्टा कहा है और बहुत कुछ कहा है जिसमें काफी सारी बातें निगेटिव है और वैसे नहीं है, पर उसकी वजह से मेरी छवि खराब हो गई है, लोगों के मन में डाउट्स पैदा हो गए। अभी मुझे पता है कि इसने ये सब किया है, अभी जैसे उस व्यक्ति को मैं देखता हूँ मेरे अंदर पूरा उसके प्रति घृणा भाव, अच्छी फीलिंग नहीं आती है
जी।
अब ये परसेप्शन बना हुआ है उस व्यक्ति के प्रति कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, ये तो सुधर नहीं सकता और इसने मेरा बहुत नुकसान किया, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, बॉडी कॉन्शियसनेस में आता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा डिटैच होके ज्ञान की गहराई में जाके सोचता हूँ नहीं, इसने ये जो भी किया ना ये अंडर द इफेक्ट ऑफ वाइसेस किया है, ये वैसा नहीं है, ये पहले अच्छा था, हो सकता है इसको कोई प्रॉब्लम हो सकता है इसको अटेंशन की जरूरत है, हो सकता है कि इसको प्यार नहीं मिला हो सकता है ये जीवन में फ्रस्ट्रेटेड हो, इसने बहुत कोशिश की हो पर उसको नहीं मिला, अभी गुस्सा कहाँ निकाले, हो सकता है उसको ऐसे लगा हो कि मेरे वजह से उसका ग्रोथ रुका हुआ हो, मेरे से भी शायद कोई ऐसी गलती हो गई हो
जी।
ये व्यक्ति वैसा नहीं है क्योंकि इस व्यक्ति ने कई बार अच्छे काम भी किए हैं, बहुत लोगों की मदद की है, समय पर आके मदद करता है, तो ये व्यक्ति अच्छा है, सिर्फ थोड़े समय के लिए उसने कुछ ऐसा किया है एंड दैट टू अंडर द इफेक्ट ऑफ वॉइसेस।
पर ये जो परसेप्शन है जो आपने बात बताई उस व्यक्ति के बारे में, वो आप शायद उस व्यक्ति को बहुत समय से जानते हैं ताकि उसकी अच्छाइयां भी आपको मालूम है, लेकिन कभी कभी कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि जिसमें हम बहुत समय से नहीं जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैरिज, अगर अरेंज मैरिज है तो अभी अरेंज मैरिज में आपको पहले का लाइफ कुछ मालूम ही नहीं है एक दूसरे का, सिर्फ सुना हुआ है, और मान लो 5 ही साल हुआ है शादी को भी, 5 ईयर्स का पीरियड जिसमें आप खाली 5 सालों का आपका एक्सपीरियंस है या 2 साल का या 3 साल का, जो भी जितना भी मैरिज पीरियड है आपका, तो आपको उतना ही पीरियड का एक्सपीरियंस है और जितना पीरियड का एक्सपीरियंस है उसमें आपने यही देखा है आपके नेगेटिव पैटर्न ही ज्यादा डोमिनेंट रहे हैं। फिर ऐसे समय पर हम कैसे उसका सोचे कि ये व्यक्ति पहले बहुत अच्छा था?
यहाँ पे राजयोग मेडिटेशन काम करता है। चलो मान लिया कि पहले भी अच्छा नहीं था, लेकिन राजयोग हमको ये सिखाता है कि हर आत्मा अपने अनादि स्वरूप में, आदि स्वरूप में संपूर्ण है। यहाँ पे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो जजमेंटल नेचर होता है ना मनुष्य का, जजमेंट दे देते हैं हम किसी को भी, वो जजमेंटल नेचर एक इन्फॉर्मेशन से बदल सकता है, केवल एक इन्फॉर्मेशन। अगर वो इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई तुरंत हमारा उस व्यक्ति के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदल सकता है। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, मुझे एक कहानी जो इस समय याद आ रही है कि एक लड़का अपने पिता के साथ में ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था, उसकी उम्र होगी 20 साल के करीब और वो दोनों विंडो सीट के पास बैठे थे, बाकी के भी ट्रेवल करने वाले लोग बैठे थे और वो लड़का बाहर जैसे पेड़ जाते हैं तो बोलता पापा वो देखो पेड़ जा रहे हैं, वो बोलता हाँ बेटा बहुत अच्छे पेड़ है। फिर थोड़ी देर में पहाड़ी जाते हैं तो वो फिर से 20 साल का लड़का बोलता पापा वो देखो पहाड़ी कितनी अच्छी जा रहे है, बोलता हाँ बेटा बहुत अच्छी पहाड़ी है। अभी ये जो बाजू वाले लोग बैठे, क्या ये बचपना है 20 साल का लड़का और ऐसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने 10 मिनट के बाद उनसे रहा नहीं गया, बोलते आप इस बेटे का कहीं इलाज क्यों नहीं करवा लेते, तो बोलते हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मैं अभी इलाज करके ही आया हूँ, ये लड़का बचपन से अंधा था, अभी इसका आंखों का ऑपरेशन हुआ है, इसको कॉर्निया लगी और पहली बार ये सब चीजें ये देख रहा है, अब जैसे ये पता चलता है
परसेप्शन सारा चेंज हो गया।
आप समझ रहे हैं हम क्या करते हैं, बाहर का उसका रूप देखकर व्यक्ति को जजमेंट दे देते हैं कि ये तो बचपना है, इसको इतना नहीं समझ में आता है।
एग्जैक्टली
लेकिन आपने बहुत बार देखा, लेकिन वो व्यक्ति जिंदगी में पहली बार देख रहा है अपनी आंखों के द्वारा, ये दुनिया। इसके लिए किसी को जज नहीं करना, हमको ऐसे काउंसलिंग में सिखाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से बिहेव कर रहा है, समझो मैंने ऐसे बहुत पैटर्न देखे, कई बहनें होती हैं रोती रहती है, थोड़ा प्रेशर आया तो उनके आंखों से आंसू बहते, और बड़े बड़े, ऐसे नहीं कि छोटे हैं, मैंने 40-50 साल वाले भी और ध्यान करने वाले भी लोग हैं, मेडिटेशन करने वाले रोते रहते हैं, थोड़ा प्रेशर आया तो रोना चालू। कई ऐसे हैं जो अभी बड़े हो गए हैं, काफी हट्टे कट्टे, लेकिन डर उनको लगा रहता है, थोड़ा कुछ हो गया तो डर लगा रहता है। हम इनको समझते हैं कि इनका कोई दोष नहीं है, कई लोगों को जल्दी फटाक करके गुस्सा आ जाता है, अचानक गुस्सा आ जाता है कई लोगों को, कई लोग नाराज हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते। ये सब जो पैटर्न्स है मनुष्य के स्वभाव में, इसके पीछे कुछ तो कारण होता है। जैसे जो रोने वाला है उसका कारण अलग हो सकता है, डर वाला कारण अलग हो सकता है। तो एज अ काउंसलर हम ये जानते हैं कि ये जो मनुष्य का स्वभाव है इसको समझना बहुत जरूर है। डायरेक्ट उसको लेबल मत दो, इतना बड़ा हो गया इसको इतना भी समझ में नहीं आता। अरे नहीं आता ना, उसके पास वो शक्ति नहीं है।
अच्छा।
जब हम उसका पूरा हिस्ट्री सुन लेते हैं ना, तो आपके हृदय के अंदर दया भाव उत्पन्न होगा
जी। मतलब वो जो लेबल लगा देते हैं हम लोग जजमेंट करके, वो हमारा मतलब गलत है, वो हमको नहीं करना चाहिए,
नहीं करना
कई बार
चाहिए।
तो ये जो आपने पहले भी बताया कि हम किसी और से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हाँ। मेरा और आपका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, मैं आपको ज्यादा जानती भी नहीं हूँ, पर आपके बारे में कोई थर्ड पर्सन से मैंने ऐसे सुना तो आपके लिए मेरा परसेप्शन बन गया।
एग्जैक्टली, ये भी बहुत नुकसान देता है। तीसरे व्यक्ति ने मेरे बारे में आपको कुछ कहा, पहले आपके और मेरे रिलेशन अच्छे है, पर वो तीसरे व्यक्ति ने क्या कहा आपको कि डॉक्टर सचिन जैसे दिखते वैसे नहीं है, अंदर से कैसे है मेरे को पता है।
कई बार ऐसे होता है, हम मिले भी नहीं है,
हाँ।
आपका नाम किसी और से सुना है,
हाँ।
और वो बता रहे हैं कि आपको मालूम नहीं है मैं ऐसे मिला हूँ, आप अभी जानते नहीं है उनको, मिलोगे तब आप जानोगे, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा है,
हाँ।
अभी मैं आपको फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, मेरा माइंड सेट वही है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली हुई है उसी माइंड सेट से मैं आपसे बात करूँ, पर मेरा एक्सपीरियंस कम्प्लीटली डिफरेंट आता है।
एग्जैक्टली, होता क्या है कि वो चश्मा हमको मिलता है उस व्यक्ति से, तो क्या करना चाहिए। इसलिए हमको परमात्मा ने बहुत अच्छे वाक्य सुनाए, मुझे परमात्मा के शिव बाबा के महावाक्य फिर से याद आते कि बच्चे कभी भी सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास नहीं करो, तुम केवल एक पिता से सुनो। क्योंकि क्या होता है कि इस दुनिया में अभी कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, और जब व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता है तो उसके अंदर दोष होते हैं, त्रुटियां होती है, और उसका देखने का तरीका त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है। चलो मान लिया कि किसी ने गलती की है, फिर हम उस लक्ष्य से उसको नहीं देखे, क्योंकि एक बहुत गहरा मनोविज्ञान है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं कि माइंड इज ओनली दोज थिंग विच इट वॉन्ट्स टू सी, मन वही देखता है जो वो देखना चाहता है। अगर आप पहले से ही चश्मा पहनकर आए, ये तो है ही ऐसा, और आपको फिर कितना भी अच्छा व्यक्ति होगा ना, आपको उसके अंदर एक बहुत अच्छा, मेरे को साइंटिस्ट का प्रयोग याद आ रहा है, बहुत सीनियर स्टूडेंट थी पीएचडी लेवल के, उनको क्लास में बुलाया, देखो कितना अच्छा प्रयोग किया प्रोफेसर ने। उन्होंने क्या कि एक बहुत बड़ा व्हाइट पेपर उनके सामने ब्लैक बोर्ड पे लगाया, पूरा व्हाइट पेपर था, उन्होंने पेन लेके उसके सेंटर में एक ब्लैक डॉट लगा दिया और सबको पूछा आपको क्या दिखाई दे रहा है। आश्चर्य के बाद सभी ने क्या कहा, ये ब्लैक डॉट
दिखाई दे रहा है।
उसमें से एक भी स्टूडेंट ने ये नहीं कहा कि ये पूरा व्हाइट पेपर है, माना इतने बड़े व्हाइट पेपर में उन्होंने केवल डॉट देखा
जी, परसेप्शन।
ये क्या है, हमारा परसेप्शन है, दिस इज व्हाट हैपेंस। अरे 99% वो पेपर व्हाइट है वो नहीं मैं देख रहा हूँ, लेकिन एक ब्लैक डॉट मेरे को दिखाई दे रहा है। और मनुष्य का यही होता है रिलेशनशिप,
प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है,
बहुत सारी विशेषता होगी, लेकिन मेरा वो कलर चश्मा है ना, मैं पहले उसको वही देखूंगा, मैं उस समय उस व्यक्ति की विशेषता नहीं देखूंगा। ये जो परसेप्शन है ये रिलेशनशिप में बहुत नुकसान करता है, और मैंने देखा अच्छे अच्छे रिलेशनशिप इसमें धीरे धीरे दूरियां बनने लगती है, दूर होकर फिर टूट जाते हैं।
बहुत सुंदर बात बताई, बहुत गहरी बात आज आपने, परसेप्शन पर जो दृष्टिकोण हमारा बन जाता है, जो एक माइंडसेट तैयार होता है उसके बारे में आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम जाने के पूर्व फिर से एक बार मेडिटेशन जरूर करना चाहेंगे।
अलर्ट होकर बैठेंगे सभी, अपना संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का छोड़ेंगे, सिर से लेके पांव के अंगूठे तक पूरा शरीर बिल्कुल हल्का, दोनों हाथ दोनों पैर छाती पेट पेट की मांसपेशियां बिल्कुल हल्की हो जाए, ध्यान दो आंखों के बीच में लेके जाए, और देखे एक सुंदर दिव्य प्रकाश दो आंखों के बीच चमक रहा है और मैं ये दिव्य प्रकाश हूं, इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं, शरीर भारी है पर मैं बिल्कुल हल्का हूं, शांत स्वरूप हूं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा शांति का प्रकाश मेरे तरफ भेज रहा है, उसका आशीर्वाद एक दिव्य प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है और मैं उस शांति के प्रकाश में समाता जा रहा हूं। मैं बिल्कुल शांत स्वरूप स्वयं को देख रहा हूं। बचपन से लेके अब तक मेरे जीवन में कई सारे लोग आए और गए, हर एक व्यक्ति ने मुझे कुछ न कुछ पाठ अवश्य सिखाया है। कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छे अनुभव हुए, कुछ लोगों के साथ कम अच्छे अनुभव हुए और हर एक व्यक्ति के प्रति मेरे दिल के अंदर एक फाइल बनी हुई है। आज मैं महसूस कर रहा हूं कि जो भी फाइल मैंने बनाई हुई है, हर एक को जजमेंट देकर रखा हुआ है कि ये अच्छा है या अच्छा नहीं है, उसके ऊपर फिर से सोचने का समय आया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आदि अनादि स्वरूप में सकारात्मक रहता है, उनके जीवन में कुछ अच्छे बुरे अनुभव होते हैं, उसके वजह से वो व्यक्ति वैसा बिहेव करते हैं, उनका बर्ताव वैसे होने लगता है। जैसे मेरा स्वयं का भी बिहेवियर, शायद कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता है। ये सब समझते हुए आज मैं स्वयं को साक्षी होकर देखता हूं और ये महसूस करता हूं कि जब भी मैं किसी से मिलूंगा, उसको अपने आदि और अनादि स्वरूप में देखूंगा, उसको ईश्वरीय संतान के रूप में देखूंगा। हर व्यक्ति पुरुषार्थी है, संपूर्णता की ओर जाने का उसकी यात्रा चालू है, उसमें मैं बाधा नहीं बनूंगा। किसी की भी सुनी सुनाई बातों के ऊपर मैं विश्वास नहीं करूंगा। आई विल गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू एवरी पर्सन। हर एक को मैं गहराई से सुनूंगा और हर व्यक्ति के प्रति मैं सजग एम्पतिपूर्ण पूर्ण सहानुभूति के साथ व्यवहार करूंगा। मैं किसी को भी फाइनल सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने को बदल सकता है, ये मुझे एहसास है। मैं स्वयं को बदलने में सक्षम हूं। अभी तक जो भी मेरे परसेप्शंस दृष्टिकोण बने हुए हैं, मैं उसको बदल सकता हूं। मेरा विजय निश्चित है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा सदैव मेरे साथ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, मैं शांत हूं, प्रसन्न हूं। ओम शांति शांति शांति।
आज के पूरी बातचीत के लिए आपने इतना गहराई से हमें अपने जीवन का अनुभव भी आपने सुनाया, और किसी भी रीति से कहीं पर भी अगर हम एक बार परख ले कि मेरे कौन से पैटर्न है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये बात आपने बहुत अच्छे से हमको समझाई, उसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति।
ओम शांति। दोस्तों, आज हमको डॉक्टर सचिन ने अपने स्वयं के जीवन का अनुभव सुनाया। चाहे कितना भी नेगेटिव एनवायरमेंट हो, चाहे कितना भी गलत वातावरण हो, लेकिन हमारा परसेप्शन चेंज हो सकता है। उन्होंने स्वयं ने राजयोग की स्टडी करते हुए किस तरह से अपना पूरे नेगेटिव पैटर्न्स को चेंज किया, वो उन्होंने हमें सुनाया। हम भी ऐसा कर सकते हैं, केवल हमें हमारा दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। एक बार अगर हम उसको देख ले, परख ले और किसी अच्छे व्यक्ति का सहारा लेते हुए, हेल्प लेते हुए, परमात्मा के सहारे से भी हम इसको पूर्ण तरह से चेंज कर सकते हैं। आप इस पर विचार कीजिए। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।